1 मई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे 6 बजे शाम को 4 बजे 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का भी, यूट्यूब लाइव का, आप जैसे सीधा हो आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए। ये बेहद क्या होता है? कंप्लीट, संपूर्ण, जिसके बाद कुछ भी बचता नहीं, जिसमें कोई कसर होती नहीं, दोनों बातें होती। बेहद का मतलब होता है कि उसके बाद कुछ बचता नहीं और उसमें कोई कमी नहीं होती। कंप्लीट बेहद का मतलब हमें बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझना, किसको छोड़ना नहीं और कोई जोड़ने के लिए बचा नहीं। अब बेहद का बाप है मीन्स सारे यूनिवर्स का बाप, पूरे ब्रह्मांड का बाप, जिसके बाद कुछ नहीं बचता। और वर्षा भी देने के लिए आए हैं तो बेहद कंप्लीट वर्षा देते। हर आत्मा को बाबा अपनी तरफ से कंप्लीट वर्षा देते। जहां हद की कोई बात ही नहीं, किसको हम 10% दें, किसको 20% दें, किसको 100% दें, नहीं, सबको 100%। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो, तुम बड़े उमंग से बड़े जोश से बाप को याद करो, माना बड़े अपना बाप की श्रीमत पर चलो। तुम बड़े उमंग से बाप की श्रीमत पर चलो तो पुरानी दुनिया भूल जाए, पुरानी दुनिया भूल जाएगी। क्यों भूल जाएगी पुरानी दुनिया? क्यों नहीं आएगी भाई? आज ऐसा क्या हो जाएगा? हाँ जी, फिर क्या हो गया? आती है तो आती है, हमने क्या करना है? हम बाबा की श्रीमत पर चलने से बाबा कहते तुम्हें भूल जाएगी। क्या हो जाएगा हमारे में जो हम दुनिया को भूल जाएंगे? क्योंकि बाबा की श्रीमत में ये बात खतरनाक है कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं, और मैं आया हूं तुम आत्माओं को प्योर बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए। तुमने मुझे बुलाया है पतित से पावन बनाने के लिए, और पावन बनने का मतलब होता है कि कुछ भी निष्ठ ना हो, कुछ भी निष्ठ ना हो, किसी को भी मेरा नहीं कहो। किसी को भी मेरा कहेंगे तो आप पवित्र नहीं बन सकते। अब बाबा की श्रीमत पर चलकर हम पवित्र बनना चाहते हैं तो हमने अपने जीवन में से मेरा शब्द खत्म करना। क्यों खत्म करना? मेरे में क्या खराबी है? मेरा मेला कर देता है, मेरा मेला कर देता है, मेरा मुझे पतित बना देता है, इसलिए मेरा कहना नहीं। सिंपल सी बात बाबा ने समझाई है कि मेरा कहना माना मैला होना। कैसे मैले हो जाते हैं? जैसे ही मैंने कहा मेरा शरीर, इतना सारा बोझा मेरे ऊपर चिपक गया, 60-70 किलो का बोझा मेरे ऊपर चिपक गया। मैं आत्मा हूं, बाबा कहते तुम आत्मा, तुम्हारा साइज 0, तुम्हारा वेट 0, और तुमने कह दिया मेरा शरीर, तो तुम्हारे को वजन चिपक गया 60-70 किलो, जितना भी है 40 किलो है 80 किलो, ये इतना तुम भारी हो गए। और उसके बाद बच्चों का मेरा, जिसको मेरा मेरा कहते गए, वो सारे मेरे आपके ऊपर चिपकते गए। अब उनको जिनको मेरा कहा है, आप उसके अंदर अंडर हाउस अरेस्ट हो गए, अंडर हाउस अरेस्ट हो गए, कैद हो गए। अब आपको बताओ, पवित्र बनना है या नहीं बनना? पवित्र बनना है तो ये मेरा कहना बंद कर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा लैपटॉप, मेरा चश्मा, मेरा 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 मेरा, जितने मेरे मेरे हैं वो सारे कोई भी तेरे नहीं। तू परम धाम से आत्मा आई थी, अब तुझ आत्मा ने परम धाम चलना है, घर चलना है, प्यार से चलना है, राजी खुशी चलना है, बिना दुखी हुए चलना है। तो जितने भी मेरे हैं उनको उनको भूल जाओ, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना जो है आप मेरे मेरे के चक्कर में आने के कारण आप जो है भूल जाएंगे। हाँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ बाबा है और कोई नहीं। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को याद रखना। आज मेरे पास कंट्रोल नहीं है, तुम बड़े उमंग से याद करो और सारी दुनिया को भूल जाओगे, तभी पावन बनोगे। प्रश्न, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी, घोट घोट कर अच्छी तरह अपने आप को रोजाना बार बार समझानी है, कौन सी एक बात? हर हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं, आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप, अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है, मिलन हुआ है, संगम हुआ है, ये बात बार बार घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, ये अभिमान मिट जाएगा। हम जितना अपने आप को आत्मा समझते जाएंगे तो देह अभिमान ऑटोमेटिक खत्म होता जाएगा। मैं ये देह हूं ही नहीं, मैं तो हूं ही आत्मा, और मुझ आत्मा का पिता है परम। बस अब परमात्मा ने आकर ये सच मुझे समझाया है और इस सच पर मुझे अब चलना है। ऑटोमेटिक सच पर चलना है तो मैं क्यों इतना 60-70 किलो का बोझा उठाकर चलूं? ये बोझा मेरे पास कब तक रहेगा? तब तक समझेंगे मेरा शरीर है, जब तक मैंने इस संसार में आकर इस शरीर के द्वारा, भले ये शरीर मेरे पास पहले जन्म में नहीं था, परंतु शरीर के द्वारा मैंने जो सुख व दुख का कार्मिक अकाउंट बनाया है, वो बराबर किए बिना मैं इस शरीर से न्यारा हो नहीं सकता। न्यारा तो मैं तभी ही हूंगा, कोई भी आत्मा तभी न्यारी होगी जब वो ये समझ लेगी कि अब मेरा कोई किसी आत्मा से लेना देना बाकी नहीं, लेना देना बाकी नहीं। जब तक लेना देना है तब तक चाहते ना चाहते हुए भी हम अपने आप को दे अभिमानी रहे। फिर बाबा क्यों सिर खा रहा है, फिर क्यों सिर खा रहा है हमारा, क्योंकि हम अभ्यास तो करेंगे ना, जितना अपने आप को पक्का करते जाएंगे, अभी ही हम अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने में दुखी नहीं। हमें ये समझ में आ गया कि ये कार्मिक अकाउंट जिसने मेरे से सेवा लेनी है वो लेगा और जिसने दुख देना है वो देगा। अब उसने सेवा लेनी है ले ले भाई, और शांति, और चाहिए तो और ले जा, फालतू ले नहीं सकते। और कम या ज्यादा दुख दे नहीं सकता। फिर ये बातें समझ में आ जाती हैं तो हम थोड़ा निश्चिंत रहते हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। ओम शांति। जो प्यास के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की वर्षा। अब ये ज्ञान उनके लिए है जो पिया के साथ। पिया किसे कहा जाता है? बाप। पिया किसको कहा जाता है? बाप। तो साजन भी बाप को कहा जाता है, फिर पति भी बाप को कहा जाता है। ये कैसी अजीब बातें करते हैं, क्योंकि बाप ही हमारा सबसे बड़ा साजन, सज्जन, मित्र है, कल्याण करना सिखाने वाला है। ये दुनिया के देह के रिश्ते हैं कि ये पति है, ये बाप है, ये भाई है, ये दादा है, ये दुनिया के झूठे रिश्ते हैं। सही रिश्ता तो एक ही है, परम आत्मा। क्योंकि ये रिश्ते हैं देह के, देह के रिश्ते भी देह के जन्म के हैं, और देह के जन्म के रिश्ते हैं इसको भी हमें देखना होगा कि ये रिश्ते केवल एक देह के जन्म के नहीं है। ये सारे जो रिश्ते हैं वो इस एक देह के जन्म के रिश्तेदार नहीं है, ये हमारे परम धाम से आने के बाद इस धरती का पर जो हमारा जीवन है, जन्म है, वंडरफुल, जो जितने समय के लिए हम इस संसार में पाठ बजाने के लिए आए हैं, वो सारे कार्मिक अकाउंट का आधार वो जीवन है जो हम यहाँ आए। इस जन्म के मेरे कर्मों का हिसाब किताब में सबसे बड़ी जो गलती हमारे बीके में, बीके भाई बहनों में ले ले या पूरी दुनिया में ले ले, वो समझे बैठे हैं हमारे इस शरीर के जीवन काल के आधार पर हमारा कार्मिक अकाउंट है। नहीं, हमारा सारा कार्मिक अकाउंट जब हम परम धाम से इस संसार में आए और अंत तक जब तक हम वापस नहीं जाएंगे, उस बीच में हमने जो कार्मिक अकाउंट बनाया है वो बराबर, ये शरीर तो ड्रेस है, ये जीवन काल के बाबा के ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं। ये बात जब समझ में आ जाए तब कर्मों की गति को सही रीति समझ सकते, कर्मों की गति को ठीक रीति ना समझने का आधार यही है कि उन विचारों को ये बात समझ में नहीं आ रही, जब मैंने पाप इस जन्म में किए हैं फिर मेरे को अगले जन्म में क्यों मिल रहे हैं। ये है हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक। इसी कारण उन्हें फिर कुछ और कुछ और कुछ और करना पड़ता, और जिसके कारण वो कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारी कर्मों की गति समझ में नहीं आ रही। गुह्य क्यों कहा गया, ये भी बहुत वंडरफुल बात है। ये गुह्य ही इसीलिए है कि इस जीवन काल को नहीं समझ रहे। आत्मा के तीन जीवन काल हमें हर वक्त बुद्धि में रहे। एक तो आत्मा अनादि और अविनाशी है, दूसरा ये शरीर का जीवन काल है। इस शरीर में वो 10 साल रहे, 50 साल रहे, 200 साल रहे, 150 साल रहे, 100 साल रहे, जितना रहे, वो उस शरीर का, उस ड्रेस का जीवन काल है। परंतु आत्मा का जीवन काल, जिस पर बाबा का सारा ज्ञान आधारित है, वो है जिस समय वो परम धाम से इस संसार में पाठ बजाने के लिए आई, और उस सारे जीवन काल में उसने जो दिया वो लेकर बराबर करके जाना, वो जीवन काल, वो आत्मा का जीवन काल। आत्मा ने कर्म किए और आत्मा ने ही कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। इस शरीर ने कोई कर्म नहीं किए हैं, इस शरीर ने कोई कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं करना। देश, ये हमें अब समझ में आ रहा है आपके साथ ये चर्चा करने के साथ, कि ये जीवन काल है जिसका कनेक्शन है कर्मों की गति के, जिसका कनेक्शन है सच्चाई के, जिसके बिना ज्ञान का आधार गलत हो जाता है। ये बहुत जरूरी है हर आत्मा तक पहुंचाना। ये ज्ञान की बरसात उनके लिए है जो पिया के साथ। आत्मा के जीवन काल का संबंध एक परमात्मा के साथ ही हो सकता है। इन देहधारियों के साथ क्या संबंध है हमारा? एक ड्रेस में कोई मिले, दूसरी ड्रेस में कोई मिले, तीसरे ड्रेस, उनके मिलने का आधार भी हमें समझ में आ गया। अब हमें इन ड्रेस को कोई भी देखने की जरूरत नहीं। हमने 84 ड्रेस लिए, 80 ड्रेस लिए, 30 ड्रेस लिए, 10 ड्रेस लिए, इसका कोई मतलब नहीं। कर्म तो मैं कर ही रहा हूं ना, मैं आत्मा ही कर रहा हूं। ये ड्रेस तो कोई कर्म कर ही नहीं रही। ड्रेस खराब हो गई है, फट गई है, मैली हो गई है, चेंज कर ली, परंतु मैंने किसी भी ड्रेस में कोई कर्जा लिया है, मैंने देना है। सुख दिया है या दुख दिया है, ये कर्जे हैं, जो लिए हैं, जो दिए हैं, वो लेना देना बराबर करके ही हमको कर। इस हाथ की ड्रेस को तो देखना सोचना भी नहीं है। इस हाथ में आने की हमें जरूरत नहीं है। हम क्यों नहीं बैठ बेहद में रहते? आज बाबा बेहद शब्द पर हमें नई बात समझा रहे हैं, हमारी बुद्धि के अंदर फिक्स कर रहे हैं कि बेहद, हमारा बेहद का यहाँ आना, वो हमारा बेहद का ही रहता है, उसमें कभी भी एक सेकंड कम या ज्यादा नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, बैठे हुए हैं। जितनी देर हम बाबा के साथ बैठकर ज्ञान का मंथन करेंगे, उतना ही तो हमें मिलेगा, उतना ही तो हमारे ऊपर ज्ञान की बरसात होगी। ये है बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा। बाबा आया हुआ है, बाबा से क्या मिलता है ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। ये है सबका बेहद का बाप, सब आत्माओं का बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वो है हद की प्रॉपर्टी मिलती है। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगा, कोई के पास 10-20 करोड़ भी होंगे, अरब भी होंगे, अब वे तो सब हैं लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे, यहाँ तुम बच्चे समझते हो बेहद के बाप और बेहद के बाप पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने के लिए। दिल में आज तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वे तो मिल नहीं सकते। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हुए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आए। बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए। हद की कोई बात ही नहीं, बाबा आपसे बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबर वार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है, जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको ब्रह्मा बाबा को भी कपड़े पड़े। ये तो बाबा है ना, कोई पूछेगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते। ये तो फैमिली हो गई ना, बाप दादा, बाप और दादा माना बड़ा भाई, ये तो फैमिली हो गई। क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो, ये तो और कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते। दुनिया में और कोई नहीं कह सकता कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। अब दादा जी बदल गया, ऊपर बाप दादा था, बाप शिव बाबा, दादा ब्रह्मा बाबा, और यहाँ उसके बाद अभी बदल गया, दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो जाते। बाप है प्रजापिता ब्रह्मा, शिव बाबा है हमारा दादा, जिसके कारण हम उसके हैं पोत्रे और पोत्रियां। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, ये तो बहुत पक्का पक्का घोषणा चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने शरीर नाम वाला ही वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं, अभी तो हैं आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप, बच्चे बच्चे और बाप बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। एक ही बार भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते हैं, ये है सबसे वंडरफुल मेला, ये है सबसे वंडरफुल मेला। क्यों ये मेला वंडरफुल क्यों है भाई? बाकी मेलों में मनुष्य मेले मनुष्य मनुष्यों से मिलते हैं, जीव आत्माएं जीव आत्माओं से मिलती हैं, यहाँ सिर्फ आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं। बल आती अपनी गाड़ी में है परंतु गाड़ी से कोई मतलब नहीं, इस शरीर से कोई मतलब नहीं। अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं, ये है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला। तुम आत्माएं ये भी तुम समझते हो, हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते, समझते हैं वे घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी। परंतु ऐसे है नहीं, अभी तो सभी शहर में आ गए, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी, गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उनको निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी। आज कल तो देखो खुद पवित्र रहते हैं और दुनिया वालों की शादियां कराते रहते। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करते हो, तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करते हो। कर्म इंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी, कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना। अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है जो कोई चंचलता ना चले, सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों को वश होना इम्पॉसिबल। बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती, यहाँ तुम कर्म इंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग, उनको भूल जाने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद ना हो, ये मंदिर आदि क्यों बनाते, तो वहाँ कर्म इंद्रियां शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। तो बाबा को तो कर्म इंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती, बाप कहते हैं योग बल से सुख हैं जी। भाई वो तो गली में उसका उसका हिसाब किताब है, वो अपना बोलेगा नहीं। योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना, कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बात को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाए, इतनी खुशी होनी चाहिए कि आंखों से आंसू प्यार के आ जाने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाप एक ही बार मिलते हैं, आत्मा परमात्मा में नहीं घुस सकती, उसमें समा नहीं जाती, बाप एक ही बार मिलते हैं, जब शरीर का लोन लेते हैं, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबे के तन को किराए पर लेते हैं तब मिलते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए, बाबा को उछल आई ना, ब्रह्मा बाबा को उछल आई ना, ओ हो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर तो ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। कोई कहेगा सियाना है, अरे पागल हो गया, खुशी का पारा चढ़ गया, इतनी खुशी नहीं, पैसे बेकार है सब के लो पत्थर। साक्षात्कार होने लगे, राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है, इस उसी खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है, तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, ये है राजयोग, बेहद के बाद से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हर सुख दो। बच्चियां कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे ये तो वैकुंठ में मिले जाना, कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे, पवित्र बच्चा मिले ये आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नर्कवासी तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितनी खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हैं, समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। ये तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं, तुम आए हो बाप के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पर लिया है। हम से बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे, कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते, ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। नहीं समझ में आई है? बाबा कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, हम किसी को ज्ञान सुना नहीं सकते, तो बाबा क्या जवाब दे रहे हैं, ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकता है। नहीं बोल सकते हो, बोलो, क्यों नहीं बोल सकते हो भाई, तुम्हें समझ में नहीं आया है ना ज्ञान, तुम समझ नहीं रहे हो ना, तुम्हें ज्ञान समझ में आ गया होता तो तुम दूसरे को भी बताते, तुम्हें खुद को तो समझ में आया नहीं, दूसरे को कैसे बताओगे, दूसरा कुछ पूछेगा आप उसे बता नहीं सकेंगे, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आई है ज्ञान। अच्छी तरह ज्ञान को समझो फिर तुम समझा सकेंगे। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं, एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो, कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है मारता है तो क्या करना चाहिए, सारे आ जाएंगे, सारे पुरुष यहाँ आ जाएंगे, ऐसी बातें बताते हैं बाबा पुरुषों को। फिर जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, बस सारे पति तो आज ये बोली देना, सारे भाइयों को सुना देने चाहिए, सारे भाई आ, और जब भी गुस्सा आए तो फूल बरसा, मैं गुस्सा कर रहा हूं तेरे ऊपर, है पति मारे गुस्सा करे तो अपना बहनों को क्या चाहिए, फूल बरसाओ। ऐसा बाबा है, ऐसी युक्तियां सिखाता है, बड़ा अच्छा लालच दिया है, बस तो ये मुरली भाई सुनेंगे नहीं, वरना सुन ले तो उनको अधिकार मिल गया है कि वो खूब गुस्सा कर सकते मार सकते गुस्सा कर सकते, क्योंकि आगे तो बहनों ने क्या करना है, फूल बरसाने हैं, हंसते रहो और खूब हंसते ही रहो, फूल बरसाते रहो हंसते रहो, युक्तियां तो बहुत है, मतलब गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना कि मेरे को क्यों मारा, मार खाते, ऐसा बाबा होना चाहिए। ठीक कह रहे भाई, सारे सोच लो ये मुरली अपने पतियों तक नहीं पहुंचाना, नहीं तो सारे कहेंगे मैं मार रहा हूँ तुझे क्या है, मैं मार सकता हूँ, बाबा ने कहा है। हाँ जी क्या हो गया, नहीं मेरे को तो बहुत अच्छी बात लगी, पति को अधिकार मिल गया है, आज अपना खूब पत्नी को जाके पीटे मारे गालियां निकाले जो मर्जी करे, ठीक है कि नहीं? अब वो कुछ नहीं करते, ये आज हाँ ये पतियों को मुरली ले जाकर सब पत्नियों को सुनानी चाहिए, आज के बाद बाबा ने मुझे अधिकार दे दिया है, मैं खूब मार सकता हूँ, गालियां भी दे नहीं, क्यों तो बाबा कह तो रहा है वो फूल बरसाएंगे अगली लाइन में बदल जाएगा, ऐसा भी है क्या? युक्तियां तो बहुत है, कामेशु क्रोधेशु क्रोधेशु होते हैं, दो ही कारण होते हैं। अब लाइन पुकारती है, एक द्रौपदी नहीं, सब द्रोप सब है, सब किसको पुकार रही हैं? बाबा। कामेशु क्रोधेशु झगड़े के कारण दो सबसे बड़े, अब बाप आए हैं नंदन होने से बचा, बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अंतिम ब्रश है ये तुम्हारा, हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया, हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया, वहां पतित आत्मा तो जा ना सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूं, जिसको जो पाठ मिला हुआ है वो पूरा कर अब सबको वापस जाना, सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े कोई गिनती कर सकते हैं, झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं, तो बाप भी मूल बात समझाते, बीज और था, बीज और था, बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जानेंगे, मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं, ये सब है अंधश्रद्धा, ये सब क्या है? अंधश्रद्धा। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप ये मत देते हैं ना, बाप की श्री मत और गत सबसे न्यारी है, मत यानी राय जिससे हमारी सदगति होती है, वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं, अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम, सर्व का सदगति दाता एक राम, जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम राम कहे आंखों पर लगाते हैं, जपना है एक फूल को, याद करना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना, बाकी जो मनते हैं वो तो शिव बाबा की पवित्र रचना, माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है, शिव बाबा को रास्ता नहीं कहेंगे, रास्ता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। शिव बाबा को रचयिता नहीं कहेंगे, यदि रचना रचयिता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है। कब रचा? हाँ जी,
ओ
कब रचना की बताओ। तो बाबा कहते मैं आकर संगम युग पर रचता हूं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है, कौन रचता है? प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ब्राह्मणों को रचते हैं, है ना। शिव बाबा की रचना आत्माएं तो अनादि है, सिर्फ वो पतित से पावन बनाने लिए बाप आते। अभी तो है पुरानी सृष्टि, पुराना संसार, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवताएं कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो, जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। ब्रह्मा क्या है? मनुष्य सृष्टि का मुखिया, हेड है, सभी जीव आत्माओं का बाप है, एडॉप्टेड, अलौकिक। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है। ये सब नई बातें तुम सुनते हो, जो बुद्धिमान है वे अच्छी रीति धारण करते। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुर देवता के फिर 84 जन्म लेते हैं, सब राज तुम जानते हो, जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात, बाप कहते हैं एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सत्युग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया तो में तो मैं पुराने से पुराने ये देवताओं के चित्र वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने से पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी ये थोड़े किसको पता है कि ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वे कहां गए, राजाई कैसे ली। बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते। ये देवताओं की कृपा है। एक शिव बाबा की पूजा है और व्यभिचारी भक्ति। शिव बाबा की पूजा क्या है? अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति के मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वे खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है, ये सब गपोड़े। एक्टर तो एक्ट करेंगे, हम आत्माएं तो एक्टर हैं। अब हम आत्माओं को एक्टिंग करने से रोक दिया जाए, ये कैसे हो सकता है। जो घर बैठे बैठ जाएं, वे कोई एक्टर थोड़े हुआ, मोक्ष होता नहीं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहां तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ ही है बात से ज्ञान लेने का, वर्षा पानी का। तुम ड्रामा में बंधाए मान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं। ड्रामा में होगे होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान। नंबर एक, योग बल की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविर बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, मुरली के सांस द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भाव। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर हो जाए। अगर सदैव मुरली के राग का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी आपके आगे। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता। प्रवृत्ति में रहते आप पवित्रता से निवृत्त रहना, सपन मात्र भी आप पवित्रता का संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650699270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं, ओम शांति।